तो दोस्तों, आज से हम एक नई श्रृंखला शुरू कर रहे हैं आपकी सहायता के लिए, खास तौर से उन लोगों के लिए जो कि एक नया घर खरीदना चाहते हैं या फिर एक ब्लॉक ऑफ लैंड लेकर उस पर अपना नया घर बनवाना चाहते हैं। और इस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं आर्किटेक्ट श्री ललित मित्तल के साथ। तो नमस्कार ललित जी।
नमस्ते कुमु जी।
बहुत बहुत शुक्रिया कि आप अपना ज्ञान और अपनी जानकारी हमारे सुनने वालों के साथ बांट रहे हैं।
थैंक यू जी, दिस इज माय प्लेजर।
तो ये बताइए कि अगर आप सोच रहे हैं कि एक नया घर खरीदना है या जमीन खरीदनी है आपको जिस पर आप अपना घर बनवाना चाहते हैं, तो खास तौर से किन मुख्य बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए?
जरूर, सबसे पहले तो मेरी सलाह ये है कि जो भी घर खरीद रहा है उसको अपना बजट जो है वो असेस कर लेना चाहिए रियलिस्टिकली, इन द सेंस कि आपकी कितनी इनकम है, आपके क्या आउटगोइंग एक्सपेंसेस हैं और आपके पास अवेलेबल फंड्स और सेविंग्स कितनी है और आप कितना लोन बैंक से ले सकते हैं, टू द पॉइंट कि आप उसको इजीली सर्विस कर सकें और ज्यादा स्ट्रेच या ओवर कमिट ना करें।
जी, ये बहुत जरूरी है मेरे ख्याल में, नहीं तो अक्सर लोग सोचते हैं कि हाँ हम तो इतना भर सकेंगे मॉर्गेज या जो भी है, और भगवान न करे कभी किसी का जॉब जाता है या वाइफ काम करना छोड़ देती है तो बड़ी मुश्किल का सामना होता होगा ना?
जी जरूर जरूर, और इसीलिए मैं और ये भी सजेस्ट करता हूँ कि मतलब अपनी रिक्वायरमेंट्स को भी रियलिस्टिकली असेस करें इन टर्म्स ऑफ साइज ऑफ द हाउस, आपको बेडरूम्स कितने चाहिए और इम्पोर्टेंटली ब्लॉक जो है उसका साइज कितना होना चाहिए। क्योंकि आजकल की बिजी लाइफ में नोबडी वांट्स टू यू नो हैव अ लार्ज ब्लॉक जिसको कि फिर मेंटेन करने में काफी टाइम लगता है।
जी बिल्कुल, और थोड़ा सा फ्यूचर प्लानिंग भी मेरे ख्याल में कर लेना चाहिए कि सपोजिंग किसी के एक बच्चा है तो ये सोच लेना चाहिए ना कि बहुत जल्द साल दो साल में दूसरा बच्चा भी हो सकता है, तो उसका प्रोविजन पहले से ही कर ले तो अच्छा है, नहीं तो फिर घर शिफ्ट करने पड़ते हैं लोगों को।
जी जरूर, ये बहुत जरूरी है कि जो भी आप घर लें उसमें देख लें कि इसमें एक्सपेंशन की अपॉर्चुनिटीज क्या है एंड फ्यूचर में मतलब अगर आप एक्सटेंड करना चाहें, क्योंकि आए दिन इंक्वायरीज होती है कि हमको एक बेडरूम और ऐड करना है या हमको एक अटैच टॉयलेट और ऐड करना है, तो दिस इज वेरी कॉमन।
ये सब सोच लेना चाहिए। अच्छा, बजटिंग कर ली, सोच लिया ये सब, फिर हमें दूसरा क्या कदम उठाना चाहिए?
एक बार आपने अपना बजट मतलब फाइनलाइज कर लिया तो फिर आपको अपने सबर्ब्स वगैरह दो तीन शॉर्ट लिस्ट कर लें अपने बजट के हिसाब से, यू नो सो दैट यू कैन बाय कंफर्टेबली इन दोस सबर्ब्स, एंड देन आपको इम्पोर्टेंटली यू हैव टू चेक अमेनिटीज, यू नो लाइक ट्रांसपोर्ट है, ट्रेन है, बसेस हैं, स्कूल्स हैं, शॉप्स हैं, पीपल विद यंगर फैमिली ऑब्वियसली इट इज इम्पोर्टेंट फॉर देम टू चेक, यू नो कि आसपास चाइल्ड केयर सेंटर हो और हाउ फार इट इज फ्रॉम योर वर्क प्लेस, वेरी इम्पोर्टेंट ऑल्सो।
ठीक है, अच्छा चलिए, ये भी कर लिया हमने, सोच लिया कि ट्रांसपोर्ट, स्कूल, शॉप्स वगैरह कितने नजदीक हैं, कितने दूर हैं, और फिर क्या करना चाहिए हमें?
ओके, उसके बाद जो आपने शॉर्ट लिस्ट कर लिया है सब दो तीन, तो फिर आपको लोकेशन विच इज वेरी इम्पोर्टेंट उस पर्टिकुलर सबर्ब में, तो ऐसी लोकेशन देखें जो कि ऐसी स्ट्रीट्स हों या घर ऐसी स्ट्रीट्स पे हों जो कि बहुत बिजी नहीं हो और स्टेशन के पास हो, ज्यादा दूर नहीं हो, मतलब वॉकेबल या ऐसे।
हाँ, नहीं तो बच्चों वगैरह को जब हाई स्कूल जाते हैं ना तो स्कूल भेजने में दिक्कत होती है, ट्रेन में जाना पड़ता है स्पेशल
स्कूल्स वगैरह। बहुत दिक्कत होती है क्योंकि कई बार अगर दूर होता है तो फिर आपको दे हैव टू बी डिपेंडेंट ऑन यू टू ड्रॉप और पिक देम अप,
और डिफरेंट अलग अलग दिशाओं में फिर आपको चक्कर लगाना पड़ता है जो कि मुश्किल हो जाता है।
जी,
शॉर्ट लिस्ट कर ली अगर प्रॉपर्टीज, फिर हमें क्या करना चाहिए?
राइट, उसके बाद आपको कुछ थोड़ा और होमवर्क करना पड़ेगा एंड रिसर्च करनी होगी ऑन दैट स्ट्रीट वेयर द हाउस इज लोकेटेड व्हिच यू हैव शॉर्टलिस्टेड, और उसकी ओरिएंटेशन क्या है, ये कमो जी बहुत जरूरी है क्योंकि अगर तो आपका हाउस विच हैज अ नॉर्थ फेसिंग बैकयार्ड तो दैट इज द आइडियल, क्योंकि उसमें क्या होता है कि मोस्टली जैसे आप टाइम स्पेंड करते हैं आउटडोर, तो अगर नॉर्थ फेसिंग बैकयार्ड हो तो आपको सारा मोस्ट ऑफ द टाइम ऑफ द डे यू रिसीव सन।
अच्छा अच्छा।
और दूसरी कुछ आइटम्स हैं, जैसे चीजें हैं जैसे कि स्लोप ऑफ द लैंड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत जरूरी है क्योंकि कई बार जो लैंड अगर स्लोप पीछे की तरफ होए तो बहुत प्रॉब्लम होती है, खास करके जब घर एक्सटेंड कर रहे हैं, क्योंकि उसमें जो स्टॉर्म वाटर होता है वो फिर आपको यू नो डिस्चार्ज करना होता है टुवर्ड्स द फ्रंट ऑफ द स्ट्रीट। बट अगर हाउस अगर पीछे की तरफ स्लोप कर रहा है तो उसका फिर स्टॉर्म वाटर जो है वो पीछे की तरफ नहीं डिस्चार्ज किया जा सकता, तो उसमें थोड़ी कॉम्प्लिकेशन होती है।
ये तो हमने सोचा ही नहीं था कि स्लोप किस तरफ जाता है।
जी ये बहुत जरूरी है, और कई जो मेरी इंक्वायरीज आती हैं वो यही होती हैं कि उनके लैंड जो है इज स्लोपिंग टुवर्ड्स अवे फ्रॉम द रोड एंड हाउ डू दे फाइंड द आंसर टू दिस। उसके अलावा जैसे यू नो ट्रीज हैं, यू हैव टू सी कि साइट पे अगर आपकी प्रॉपर्टी पे बहुत ज्यादा ट्रीज हैं तो इट्स नॉट ब्लॉकिंग योर सोलर एक्सेस, एंड अगर आपको एक्सटेंड भी करना है फ्यूचर में तो कई बार बहुत काउंसिल्स जो हैं दे वेरी पर्टिकुलर एंड दे डू नॉट परमिट टू रिमूव द ट्रीज। दूसरा फिर आपको आपके नेबर्स चेक करना चाहिए इन द सेंस कि यू नो दे आर नॉट वेरी नॉइजी, बिकॉज देर इज समथिंग कॉल्ड विजुअल एंड एकॉस्टिक प्राइवेसी। तो विजुअल प्राइवेसी इज लाइक यू नो जैसे विंडोज वगैरह हैं या बालकनी, दे आर नॉट ओवरलुकिंग इन टू योर प्रॉपर्टी एंड लाइक वाइज यू आर नॉट ओवरलुकिंग इन टू देयर प्रॉपर्टी। एंड ओवर शेडोइंग इज लाइक अगर मान लिए आपका अगर सिंगल स्टोरी हाउस है और आपके एकदम next door is a very tall two storied house, then it may happen that you know the time when you want to receive sun in the afternoon it is overshadowed by your neighbor, so ye dekhna bhi bahut zaruri hai.
ji ji, ye aapne badi achhi jankari di hai Lalit ji, aur aage chalkar hum is baat par charcha karenge ki house inspection wagaira bhi karwani chahiye na, lekin aaj इतना हम बताते हैं अपने सुनने वालों को और श्रोताओं को कह दें कि भाई अगली बार हम हाउस इंस्पेक्शन वगैरह के बारे में चर्चा करेंगे। बहुत शुक्रिया ललित जी।
थैंक यू।
थैंक यू।